डॉक्टर मरियम, सुनो, क्या उसको बहुत चाहती हो? डॉक्टर मरियम, तुमसे पूछ रही हूं, क्या उसको बहुत चाहती हो?
किसको?
उसी को जिसके लिए घड़ो घड़ो आंसू बहा रही हूं, पूछ रही हूं।
मैं खुद भी नहीं जानती कि क्यों रोई जा रही हूं, शायद मायूस हो गई हूं।
मुझे पता है कि उसे चाहती हो, लेकिन शक ना करो, ये आदमी जो कोई भी हो उसकी इतनी कदर कीमत नहीं है, मुझे इसका तजुर्बा है। ये सब खाम ख्याली है डॉक्टर मोहतरमा, उसकी यादें हैं जिसकी जरा बराबर भी कीमत नहीं है।
क्या मर्द होना जुर्म है?
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें तजुर्बा नहीं है, मर्द होना ही असल में जुर्म है। अच्छा आदमी तो पाया ही नहीं जाता, अगर कोई अच्छा आदमी मौजूद है भी तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो सामने आकर साबित करे। इन लोगों के सीने में दिल नहीं हुआ करता, ना दिल होता है और ना ही जज्बात होते हैं।
मर्द होना और औरत होना कोई भी जुर्म नहीं है, बुरा होना जुर्म है। औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है।
ओहो, मैं इन्हीं में से एक की खातिर आज यहाँ पड़ी हूँ, इस तरह बेसहारा हो गई हूँ, उसके बाद किसी दूसरे का बोझ बन गई हूँ, फिर किसी और का, फिर किसी और का। पहले वाला आदमी अच्छा दोस्त साबित नहीं हुआ, दोस्ती की वजह से आसानी से घर आता और जाता था। मेरे भाई को जब पता चला, बुला के मुझे नसीहत की कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसे छोड़ दो। मैंने कहा उसको तुम इसको घर में लेकर आए, उसकी मोहब्बत को मेरे दिल में बिठाया, अब ये कहते हो कि इसको छोड़ दो, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने बात नहीं सुनी, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने मिलने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन उसने मुझे घर पे बुलाया, फिर जानती हो उसने क्या सिला दिया। दूसरे दिन जब हम पहली पार्टी में गए, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैंने उसका गरीबान पकड़ा और कहा कि भले आदमी, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, मैंने घर वालों को नाराज कर दिया तुम्हारी खातिर। हमारी ये मोहब्बत सिर्फ एक रात के लिए थी। उसने मुझसे कहा, अगर तुम अच्छी लड़की होती तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद से अलग नहीं करते। देखा तुमने कि मर्दों की इतनी कद्रोह मंजिलत नहीं है कि तुम उनके लिए आंसू बहाओ।
जो पुलिस वाले वहां पर तैनात हैं, उनसे कोई खबर आई है क्या?
सब कुछ है मैडम, जो सुबह आपको रिपोर्ट दी थी, सिर्फ रजाई मैडम उस कमरे में सफाई करने गई थी। उन्होंने सुना कि सदमे के बायस खुदकुशी का इरादा है, और हमें लगता है कि हमें और चौकन्ना हो जाना चाहिए।
ऐसा लगता तो नहीं है?
ऐसा लगता है कि शदीद नफसियाती दबाव है।
क्या उस आदमी ने तुम्हें पीट कर अधमरा किया है?
नहीं, हम लोग गए थे एक पार्टी में मजे लेने के लिए हमेशा की तरह। हम लोग 10-15 लोग होंगे, मैं पहले भी वहां जा चुकी हूँ, लेकिन इस मर्तबा अलग ही कैफियत थी। अचानक देखा कि हर जगह गुलाबी रंग बिखर गया, एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों में मैं चहलकदमी कर रही हूँ। अचानक देखा कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो खुल गई। मैंने सोचा कि इस खिड़की से निकलकर बाहर जाऊं, बाग में घूमूं। कितने में बहुत भयानक पेट में दर्द उठा मेरे। ओहो, और जब होश आया तो देखा कि आपके बगल में लेटी हूं।
तुम्हारे घर वालों को पता है?
हो सकता है पता चल गया हो, लेकिन मैं जानती हूं वो नहीं आएंगे। कई महीनों से हम एक दूसरे से बेखबर हैं, किसी को कुछ पता नहीं। मेरे डैड तो मुल्क से बाहर बिजनेस में सरगर्म हैं, और मेरी अम्मी भी हमेशा स्विमिंग पूल के पास बैठी अपने नाखून घिसा करती हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ जाएं। अम्मी थोड़ा डांट-डपट करें और भाई भी बोलेगा कि जैसा करोगी वैसा भरोगी। तुमको जाना ही नहीं चाहिए था। जिंदगी यही है डॉक्टर मैडम, यही जिंदगी है।
अब तुम क्या करना चाहती हो?
कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ दिनों तक यूं ही दवा वगैरह खाऊंगी, फिर देखते हैं क्या होता है।
तालीम भी हासिल की है?
हाँ बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो भी बिल्कुल आजाद होकर।
फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दिल ने भागने की ठानी?
हाँ ठीक है, जो कहना चाहो कह सकती हो, तुम तो डॉक्टर हो, सभी यहाँ लोग तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार खानदान के सभी लोग तुम्हारी खैरियत पूछते हैं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं होती कि दिमाग पर चोट लगी इस मरीज का हाल पूछ ले कि कैसी हो, क्या हाल है। झुंड का झुंड आता है तुम्हारा हाल पूछने के लिए। तुम्हारे माँ बाप भी तो यहाँ आकर एक फूल की तरह तुमसे प्यार करते हैं। मैं देख रही हूँ माशाल्लाह तुम्हारे ऊपर फूल भी बरसाए गए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई हो, मुरझा चुकी हो और जार जार आंसू बहाए जा रही हो। डॉक्टर मैडम तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि मेरी जिंदगी में क्या परेशानी है और कैसी है।
तुम्हारी जिंदगी मुझे ज्यादा बुरी नहीं लगती।
जाहिर है कि नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी और बकवास है।
ऐसा ना कहो, ये हम हैं जो अपनी जिंदगी में खूबसूरत लम्हात वजूद में लाते हैं।
तुम लोगों की इन्हीं बातों को मैं सुन रही थी, तुम्हारी भाभी भी इसी तरह की बातें कर रही थी।
मैं और कुछ तो नहीं जानती नहीं समझती, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे घर वालों के दिल में कुदूरत नहीं है।
तुम उन्हें नहीं जानती इसलिए नहीं समझोगी। मेरे घर वाले इस वक्त चैन की नींद सो रहे होंगे, बिल्कुल घोड़े बेच कर सो रहे होंगे। अरे डॉक्टर मैडम, तुम मेरे लिए अपने आंसुओं के इस मश्क को क्यों खाली कर रही हो?
तुम्हारा नाम परी है?
हाँ, मुझे कहते हैं परी, इसलिए मैं हमेशा पर हिलाती हूँ ताकि ऊंची उड़ान उड़ सकूं।
परी बड़ा अच्छा नाम है।
अरे मरियम, तुम भी कैसा ख्याल रखती हो, खुशफहमी है।
तुम अपनी कादर को पहचानो, तुमने ड्रग्स का इस्तेमाल करके क्या बुरा नहीं किया?
कभी तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है।
अजीज दोस्तों, आज की सुबह आप सभी के लिए बहुत सुहानी है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज का पूरा दिन आपका और आपके घर वालों का बहुत ही सुहाना बना।
मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाऊंगी, और कहना भी नहीं कि मैं आई हूँ।
ठीक है,
और अजीज अम्मी को भी दरवाजे पर मत आने देना क्योंकि मैं अंदर नहीं आऊंगी। इतना ना कहो, ठीक है, मुझे सब खबर है।
ये भी ठीक है।
इसको कहते हैं खूबसूरत जिंदगी, एक बोले तो बाकी सब बोले जो हुक्म।
जी हाँ, जनाब की भी जिंदगी देख रही हूँ कि जो हुक्म नहीं कहा और बस हुक्म दिया कि फिलहाल एक हाँ भी नहीं कहलवा सके।
ये किसी अच्छे को ढूंढ रहे हैं।
अरे अरे अरे, तुम फिर मुंह खोला तुमने।
मैं भी उतर रहा हूँ, अभी गेट खुला रखूं या बंद कर दूं?
डरते हो कि अगर मैं नीचे उतरूंगी तो गुम हो जाऊंगी?
डर इस बात का है कि आप अजीज दादी के घर आकर हम सबको चौंका दें।
डरो नहीं, मैं खुद को तुम लोगों की तरह जलील खार नहीं करूंगी।
जी नहीं, होशमंद घराने के सभी लोग औरतों के सामने कसूरवार हैं।
मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसी औरत को कबूल नहीं करूंगा।
तुम कौन हो?
तुम नहीं, अमीर अली होशमंद,
पापा का बेटा।
Thank you. हेलो, सलाम।
सलाम बाहर खोलो।
अजीज दादी पापा वगैरह हैं।
क्या बात है, दिन के इस वक्त परहेज करना छोड़ दिया है क्या?
अजीज दादी आप हमारी सबसे अजीज दादी जो ठहरी, हम तो हमेशा ही आपको तकलीफ देते हैं।
अरे तो तुम हमेशा यहाँ क्यों रहती हो, अपने शौहर के घर क्यों नहीं जाती?
कहाँ है अजीज अम्मी?
सलाम
सलाम अजीज अम्मी, कैसी हैं?
ठीक है,
आओ इधर बैठो।
ओ दादी, आप शाहनामा कितना पढ़ती हैं? इस सब्जेक्ट को क्लास में पास नहीं किया था क्या?
हिकमतो मार्फत के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ती है बेटे, ये शाहनामा है, हिकमत है, मार्फत है, अदब है, इस तरह थोड़ा बहुत तारीख भी है।
ये थोड़ी सी तारीख है दादी, मेरी नजर में तो शाहनामा पूरी तारीख ही है।
तारीखी किताब नहीं है बेटे, हकीम फिरदौसी ने तारीख के लोगों की जबानी हिकमत की तालीम दी है, बताया है कि अच्छा हाकिम कौन है, बुरा हाकिम कौन है, अच्छा पहलवान कौन, बुरा कौन।
अलबत्ता मुझे इस बारे में बहस करनी है, लेकिन अभी इसकी जगह नहीं है।
अब तक तुमने कितनी मर्तबा गौर से शाहनामा पढ़ा है, पहले ये बता।
मैंने मैं चूंकि मुझे वक्त नहीं मिला पढ़ने का, बस स्कूल की किताबों में पढ़ा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये तारीख के बारे में।
समझते हो, लेकिन उस चीज के बारे में जिसको नहीं पढ़ा, घर वालों का वक्त बर्बाद ना करो, मेरी तरह है ना अजीजा।
तुम अगर मुंह खोलोगे तो
कहेंगे। ए, ए, चुप हो जाओ।
मेरे बच्चे, इसने पढ़ा है, सवाल करना चाहता है, कोई हर्ज नहीं है। बेटे यूनुस, ये अफसाना है, और अफसाना और तारीख में बड़ा फर्क है। मेरे बेटे, जैसे कि रुस्तम ताकत का नमूना है, और रुदाबा, जाने दो तुम्हें ऐसे बताऊं कि जैसे हकीम फिरदौसी ने कुछ औरतों और मर्दों की मिसाल पेश करके हमें हिकमत और मार्फत की तालीम दी।
अजीज दादी ऐसे बोले कि हम भी समझ सके, हम पर रहम करें।
तुमने तो अपने बाबा से सब जान सुन रखा था, फिर अपने बच्चों को क्यों नहीं बताया?
अजीज अम्मी, लोगों के पास सुनने के लिए वक्त कहाँ है, अलबत्ता दूसरी बातों और चीजों की फरमाइश के लिए वक्त है इनके पास, हमें भी सुनना पड़ता है क्योंकि ये तालिबे इल्म है, और क्या पढ़ते हैं खुदा ही जानता है।
रुके रुके,
हानिया होगी, जाओ जाकर खोल दो, फोन किया था कि यहीं आ रही है।
सलाम फूफी, तशरीफ लाइए, खुशामदीद।
तुम्हारा बेटा दिल लगाकर पढ़ाई करने वाला है मेरे बच्चे, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे दिल लगाकर पढ़े।
अजीज दादी आपकी इस कद्र शिनासी का शुक्रिया, मैं आपका मुखलिस हूँ। गौहर की शनाख्त जौहरी और यूनुस की शनाख्त अजीज दादी का।
बाहर बेटी,
अजीज दादी जान
तुम्हारी फूफी आई है, थोड़ा फल लेकर आ जाओ। शुक्रिया बेटी।
सलाम
सलाम
सलाम अम्मी।
सलाम भाई,
कैसे
हो
तुम?
सलाम,
आइए बैठ।
शुक्रिया बच्ची।
उफ, ये तेल की महक कहाँ से आ रही है?
इस लड़की बाहर के नकाब में पता नहीं कहाँ से रंग लग गया है, वो तेल लगाकर उसे छुड़ा रही है।
दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही पता लग जाता है कि तेल की महक है।
अम्मी तो दरवाजे से ही आए, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
तो लॉन्ड्री में धुलने को दे दें, इस तरह तो परेशानी हो जाएगी।
सलाम अजीज अम्मी, आपका मुखलिस हो, आपका सरापा इखलास दमा।
ओ, मैंने तो सोचा था कि हानिया अकेले आई।
तो लौट जाओ।
नहीं नहीं, कैसी बात करते हो, तुम्हारा खैर मकदम है।
सलाम हातिफ भाई, वाह हमारा कैसा नसीब है। वाह अमीर,
अमीर
अली तुम कैसे हो? कैसे हो इंजीनियर, तुम ठीक हो?
मैं लेकर आता हूँ।
वालेकुम सलाम बेटी। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा ना।
अरे नहीं नहीं, यहाँ बैठो।
हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे बेटा अपनी फूफी जान के लिए भी ले आओ।
फूफी जान आप यहाँ बैठिए,
यही बैठिए।
कहती है मेरा भांडा फोड़ दिया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं।
आप तो ठीक है ना?
लोगों से कुछ कहा ही नहीं है। मेरी
कुछ
क्या
लोग तेल का पैसा खाते हैं और कुछ लोग तेल की महक। जाओ बेटी अपना काम देखो, जाओ बेटी।
मैं कोई मदद करूँ?
नहीं कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ।
अब तो धीरे धीरे तेल का सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर को देना होगा, क्यों है ना इंजीनियर साहब?
अलबत्ता मैं भी मानता हूँ कि सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए।
हम तो अब मुल्क को इस उसूल की बुनियाद पर, वो बुनियाद क्या थी पता नहीं, कौन सी बुनियाद थी, वो मुल्क की बुनियाद को इस तरह के उसूलों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी तेल का पैसा भी प्राइवेट सेक्टर खा रहा है, जिसका इस्तेमाल ज्यादा है वही सब्सिडी की रियायत ज्यादा ले रहा है।
धीरे धीरे हुकूमत भी प्राइवेट हो जाएगी।
नहीं 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 अजीज, अगर हुकूमत प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो मैं तो बिल्कुल ही मुल्क का सदर जमहूरिया बनना नहीं चाहूंगा।
नहीं, आप खुद तकलीफ ना उठाएं। आप पैसे खर्च करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, किसी को खड़ा करते हैं, सीधे साधे लोग भी यकीन करके आपके आदमी को वोट देंगे।
अगर इस तरह हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अमेरिका जैसा हो जाएगा।
दादी आपके दामाद असली लाइन से कच्ची रोड पर जा रहे
हैं। तुम अपना ध्यान रखो, मिट्टी मिट्टी ना हो जाना।
जितना भी सोचता हूँ दिमाग काम नहीं करता कि एक आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि किसी ओहदे पर पहुँचने के लिए वो इतना पैसा खर्च करता है और प्रोपगंडा करता है। एक आदमी उठता है, प्रोपगंडा करता है कि मुंतखब होकर ओहदे पर आए और जब बरसर इख्तदार आ गया तो लोगों का हक मारकर अपना कर्जा चुकाने बैठे।
ये सब बातें अब खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन क्या तुम लोग मुझे बताओगे नहीं कि क्या हुआ है?
यूनुस इधर आओ। क्या हुआ?
अम्मी बाहर खड़ी हुई हैं। तुम ऐसा कुछ भी मत करो जो अजीज दादी समझ जाए। तुम रुको। इजाजत है बैठने की?
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे।
एक आध खीरा मेरे लिए चलो।
कुछ तो हुआ है तुम सब लोगों का अचानक यहाँ मेरे पास आना, वो भी दिन में। मैं मरने वाली हूँ या कोई और मरने वाला है? कौन मरने वाला है?
खुदा ना करे अजीज अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं?
मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो।
तुमने बड़ी मेहरबानी की यहाँ आकर।
आपको पता है अजीज अम्मी, फरीदून सदर ममलिकत होने वाले हैं।
अरे वाह।
नहीं अजीज अम्मी, जानती है क्या मरियम यानी भाईजान अस्पताल गए हैं कि?
आप बिल्कुल परेशान ना हो अजीज अम्मी, मैं खुद ही आपको बताता हूँ ना मैं आपको। आप बिल्कुल परेशान ना हो। किसी आवारा ने, लोफर गुंडे ने, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके माँ बाप तक का पता नहीं है।
मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ये फ्रेम टेढ़ा कैसे हो गया? आदमी को नहीं कहते कि आदमी थोड़ा नज़र करे, दुआ करे? इसका बहुत फायदा है। मेरे बच्चों, ये दुनिया और जमीन दुआ और नज़र से ही चल रही है। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि मेरा भरोसा कमजोर पड़ गया है? या अल्लाह, या ये सोच लिया है कि इस कदर नातवा और कमजोर हो गई हूँ कि गिर पड़ूंगी? क्यों? अल्लाहुम्मसल्लम।
दादी, दादी जान, अजीज दादी, हम सब की अजीजों में अजीज आप मेरी तरफ देखें। माफ करें दादी, हमसे गलती हो गई। हम ये भूल गए थे कि आप हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। माफ करते हैं।
आज सुबह सवेरे मौसम के दारे ने ऐलान किया है कि रिमझिम बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। बादल छाए रहेंगे, मौसम सुहाना रहेगा।
तुम अच्छा बच्चों की तरह खाना नहीं खा सकते हो क्या?
बस आओ जाओ यही करो। खाना खाना है तो बैठ कर खाओ ना।
चिल्लाती रहो, मुझे काम था ना। और मौसम, ये दही कहाँ गई?
फ्रिज में है।
तो जाकर लाओ ना।
तुमको हाथ नहीं है क्या? नौकरानी समझ कर रखा है ना। देखो तो क्या कर दिया कमबख्त मनहूस। दफा हो जाओ यहाँ से।
तुम दफा हो जाओ यहाँ से, बद अखलाक कहीं की। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है? अपने घर क्यों नहीं जाती हो? मेरी दुआ है कि तुम और मुर्तजा अभी यूनुस और मरियम की तरह बदनसीब हो जाओ।
बहार, तुमसे ही उम्मीद नहीं की जाती। क्यों मारा तुमने उस बेचारे को?
देखे तो क्या कर दिया है इसने। क्या बैठकर खाना भी नहीं खा सकता है? बस उठता है, आता है, जाता है।
जरूर आप अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जा रहे होंगे, लिहाजा जरूरी है कि उन पर ज्यादा तवज्जो और ध्यान दें। उन्हें खेलने के लिए अकेले बिल्कुल ना छोड़ें। किसी अनजान आदमी से कुछ।
मेरे आसाब खराब है, खाने के लिए भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं उलझ कर रह गई हूं। यूनुस की तरफ से परेशान हूँ, मरियम की तरफ से भी, खुद अपनी तरफ से भी।
आज सुबह सवेरे मौसम के दारे ने ऐलान किया है कि रिमझिम बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। बादल छाए रहेंगे, मौसम सुहाना रहेगा। लेकिन इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी अजीज शहरियों को हिदायत दी है कि अपनी गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रखें और मौसम और छुट्टी का भरपूर फायदा उठाएं। साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, जो भी कूड़ा है उसे कूड़ेदान में ही डालें और इस तरह से अच्छे शहरी होने का सबूत देते रहें दूसरे शहरियों के लिए भी।
समीन, मैं आपकी खिदमत में एक आपकी पसंद का प्रोग्राम लेकर के आया हूं और आपके लिए पेश कर रहा हूं। यहां पर आपकी पसंद के कुछ ऐसे मसाइल आपके सामने लाऊंगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मुफीद होंगे। आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना और उसके लिए जरूरी है कि सुबह उठकर आप सबसे पहले वर्जिश करें, लेकिन ये वर्जिश इतनी ज्यादा भी ना हो कि आपको जिस्मानी तकलीफ पहुंचाए।
साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, जो भी कूड़ा है उसे कूड़ेदान में ही डालें और इस तरह से अच्छे शहरी होने का सबूत।
आपको चाहिए कि आपकी जिस्मानी तवानाई के हिसाब से आप अपनी वर्जिश का इंतखाब करें।
बच्चे कितने अच्छे होते हैं कि उनकी नाराजगी फौरन दोस्ती में बदल जाती है।
इस कदर खुशफहमी में ना रहना। इस बहार को अब कितनी मेहनत और खर्चे के साथ खुशामद करनी पड़ेगी अमीर अली की। ये खरीदो वो खरीदो तब जाकर मानेगा वो। ये लो चाय।
जरा ठंडी होने दो। जितना मैं सोचता हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यूनुस के दोस्त का बाप फरीदून को कैसे जानता था कि फोन करके उसको बताया और मरियम के बारे में बोला। उसूली तौर पर ये ऐसा क्यों करेगा?
फिर तुम फरीदून के पीछे पड़ गए। मैंने बताया ना वो दोस्त है उसका।
मेरी उलझन भी यही है। जब फरीदून कहता है तो कुछ तो होगा। अब उसके होने या ना होने में शक करना चाहिए।
क्या फरीदून फरीदून की रट लगा रखी है? अगर सोचना ही है तो सोचो और देखो कि ऐसा क्या हुआ कि इस मरियम ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। पता नहीं, शायद खुदा की मर्जी थी कि मना कर दे। ये शायद उस हालत में यूनुस ही मना कर देता। नहीं पता। चलो उन्हीं को शर्मिंदा होने दो, हम क्यों शर्मिंदा हों?
मुझे पूरा इत्मीनान है कि इस खबर को कहीं से हासिल किया है, वरना समाज में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है वो।
शायद अस्पताल फोन किया हो या हानिया से सुना हो।
ये घड़ी तुम्हें याद है? जब हमने ये घर खरीदा था तो फरीदून खान ने मुझसे कहा था, अब वक्त तुम्हारा है।
मैंने इसे स्टोर रूम में रख दिया था। 10 मरतबा सोचा कि दूर फेंक दूं। अरे इन बच्चों की जंगो सुलह का क्या हुआ? हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ 6 महीने की सजा हुई है।
चूंकि मैंने उनका साथ दिया है, तफ्तीश में इसका ख्याल रखा गया।
कल मैं तुम्हारे पास आऊंगी।
तुमने सबको बताया कि मैं दुबई गया हूं? ये तो बताओ, किसी को शक तो नहीं हुआ?
नहीं, किसी को भी शक नहीं हुआ। और बच्चे भी गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं।
तुम खुद ही कुछ खरीद लेना।
खरीदा है, तुमने क्या सोचा तुम्हारा इंतजार करूंगी?
हादी भाई की क्या खबर है?
हादी भाई जंग पर है। मेहरंगेज भाभी को फोन करके बताया है, हो सकता है कि छुट्टी लेकर आ जाए।
बेचारे अब्बा जान, उनके बच्चे किस तरह दर बदर भटक रहे हैं।
हादी भाई तो अपनी मर्जी से गए हैं, तुम्हारे अब्बा भी राजी हैं। तुम भी दुबई घूमने फिरने गए हो। और हानिया के हालात भी ठीक है।
फरीदून का अंजाम क्या हुआ?
खुदा का शुक्र है कि उसे निकाल दिया।
जरा मुझे यहाँ से निकलने तो दो, देखो फिर मैं क्या करता हूँ।
इसका क्या मतलब कि देखो क्या करता हूँ? तुम्हें इसे कोई सरोकार रखने की जरूरत नहीं है, और अफसर ने भी कहा है कि तुम्हें फरीदून से कोई राबता नहीं रखना चाहिए।
तो क्या फैसला हुआ?
जिद्दी हठधर्मी अपनी बात पर अटल है।
मुझे कह रहे हैं?
हाँ,
वो मुझे कह रहे हैं। अगर 100 बार भी कहोगे तो भी मैं इससे ज्यादा खुद को जलीलो खार नहीं
करूंगी। सुनिए तो मोहतरमा,
फोन करके पूछा आपने डिस्चार्ज कब करेंगे पापा?
शायद आज ही बेटी। मैं तुम्हारे हादी अंकल के पास जा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग साथ निकल जाएंगे।
यानी अम्मी बाद में आएंगी?
ये तो मना कर रही है, अगर ये नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा।
हम मर्दों को औरतों के हुक्म का ताबे नहीं होना चाहिए।
चुप रहो बेटे, तुम्हारे पापा की क्या मजाल, तुम्हारे बाप दादा भी ताबे हैं।
तशरीफ ले जाए मोहतरमा, तैयार हो।
तुम नहीं जाओगे, अपने कमरे में जाओ।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना अम्मी, अभी इनसे बातों का वक्त नहीं है।
उन्हें एहसास तो हो कि गलती की।
अभी इन सब बातों का मौका नहीं है, हर चीज का एक मौका महल होता है।
क्यों नहीं, जगह में सिर्फ नुक्ता होना चाहिए।
तो यही कह
रही, तुम मेरे इल्म के कायल हो गई हो।
मोहतरमा, ये भी आपके इंजीनियर बच्चे, अगर इस जाहिल की बात समझ में नहीं आती तो उनकी बात तो समझो।
ये मेरी गलती है ना जो कहती हूँ कि अपनी इज्जत को संभाल कर रखो। कुछ नहीं, रहने दो।
यूनुस बेटे, अगर चलना है तो चलो, निकल चलते।
मनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग जाए, मैं आता हूँ। अम्मी,
मैं तो बगैर डरे जाऊं।
बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है।
आप लोगों को किसी का ख्याल तो है नहीं।
अरे
माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी जितनी तारीफ की जाए कम है, जो मैंने बच्चों की ऐसी तरबियत की।
बच्चों की तरबियत? इस गुलदस्ते को लेकर आओ बाहर के साथ। मैं तो जा रहा हूँ।
बाहर जब तक अपने शौहर के घर नहीं चली जाती, इसे यहाँ की इज्जत रखनी होगी।
अम्मी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर कोई नहीं जानता होगा तो सोचेगा कि घर की बेटी मैं ही हूँ।
एक मिनट, जरा इधर आओ, इधर आओ, जरा जल्दी आओ। देखो मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ।
अरे अजीज दादी,
मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंकल अकेले तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारी चची भी तुमसे अकेले मिलने आई हैं, और यूनुस के साथ भी तुम्हारा रवैया रूखा था।
अजीज दादी, जिस तरह से आपको बताया गया है वो सही नहीं है।
मेरी बच्ची, बात क्या है?
कुछ नहीं अजीज दादी, मैं तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हूँ, मेरे पास खबर कहाँ से आई?
इंशाल्लाह तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, जल्दी घर आ जाओ। अरे तुम भी तो टूटी फूटी बिस्तर पर पड़ी हुई हो, क्या कर लिया अपने साथ?
मैंने खुद तो ऐसा नहीं किया, जहाँ गिरी वो जगह सख्त थी।
अरे सामने देखकर नहीं चल रही थी क्या?
क्या बताऊं
परी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अजीज दादी के आगे तुम्हारी जबान नहीं चल पाएगी, खुद को तकलीफ में न डालो।
तुम सच कह रही हो, माशाल्लाह तुम्हारी दादी तो बहुत चुस्त तंदुरुस्त हाजिर जवाब भली चंगी हैं। मैं कह रही थी दादी, आपके शौहर हैं कि नहीं?
तुमने अदबियात में कितने नंबर पाए थे?
क्या
इस तरह बातें करना बोस्तान से सीखा है, गुलिस्तान से या शाहनामे से?
अगर सेंसर ना किया जाए तो टेलीविजन से सीखा है।
तुम किताब भी पढ़ती हो या नहीं?
अरे नहीं, किताब विताब क्या होती है, आप भी कैसी बातें करती हैं अजीज मैडम।
अभी तो तुम्हारे पास मौका है, वक्त भी है, कुछ किताबें अभी तुम पढ़ सकती हो।
अजीज मैडम, मेरे हाथ पांव में बहुत दर्द होता है, किताब पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, जाने दें।
अच्छा बेटी मरियम, तुम किताब यहाँ पढ़ती हो या नहीं?
नहीं अजीज दादी, काश आप मेरे लिए किताब लाई
मैं
होती।
बिल्कुल भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा, मैं किसी के हाथों तुम्हें भेज दूंगी।
हाँ, पापा को मैं बोलूंगी, वो लेते आएंगे। हाँ, क्योंकि वो रात में आने वाले हैं।
जब तुम्हारी छुट्टी हो जाए तो मेरे पास आ जाना।
जी।
तुम्हारी देखभाल करूंगी, मैं भी अकेली नहीं रहूंगी।
जी, ठीक है।
शुक्रिया मेरी बच्ची, तबीयत ठीक हो जाने के बाद इंशाल्लाह तुम भी अपने घर लौट जाओगी। मेरी प्यारी बच्ची, अपनी वो खूबसूरत ज़बान अच्छे से चलाया करो।
ठीक है जी अजीज मैडम।
तुम्हारा शुक्रिया भाई, कल तैयार है ना, तुम लोगों को लेकर हादी भाई के घर जाऊंगा।
अगर मना करूंगी तो झगड़ा हो जाएगा।
यूनुस आज रात नहीं आएगा?
नहीं, आज अजीज दादी के घर रहेगा।
हाँ भाई, गैर शादीशुदा जिंदगी और इधर उधर।
बाद में मैं और मुर्तजा अपनी ड्यूटी का टाइम बदल लेंगे।
अच्छा लो, चलो ये रख लो, रखो ना, रात को ठंड बढ़ जाती है बेटा, माना करो मेरी बात।
सुनो, अपने साथ गर्म कपड़े लेती जाना, रात में जब हरम से बाहर निकलोगी तो मुमकिन है कि सर्दी लग जाए।
जो हुक्म जनाब।
कल जाकर तुम्हारा जो छोटा मोटा सामान रह गया है खरीद लेंगे।
आखिर तुम वक्त से पहले छुट्टी लेने में कामयाब हुई कि नहीं?
हाँ पापा, कल से पूरे 3 हफ्तों तक छुट्टी रहेगी।
अब इसकी समझ में आ रहा है कि इसकी दोस्त इसके साथ धोखेबाजी कर रही थी। मेरी बच्ची का दिल भी मेरी तरह साफ है, मैंने उससे कहा था कि कोई साजिश कर रहा है, बस बोले जा रही थी कि नहीं। अरे मैं कह रही थी कि क्या ये हो सकता है कि छुट्टियां होते हुए शादी के मौके पर तुम्हें छुट्टी ना मिले, जरूर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है।
ये बुराई है।
ये बुराई नहीं बल्कि सच्चाई है।
जाहिर है, अगर इसमें सच्चाई नहीं होगी तो ये बुराई है।
अरे बाहर तुमने जितने काले कपड़े वही सब रख लिए, तुम नई नई मिली दुल्हन हो, लाओ मुझे दो ये सब। अच्छा सुनो, कल तुम हमारे साथ शॉपिंग करने चलोगे?
नहीं, तुम ही चली जाना, मुझे तुम्हारी पसंद मंजूर है।
मतलब कल हम टैक्सी से जाएं?
वल्ला अगर जनाब तशक्कुरी मुझसे राजी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि एजेंसी जाना होगा। अलबत्ता अगर मान जाएं और मेरा काम पसंद आ जाए तो मैं वहाँ का गवर्नर बन जाऊंगा।
अब तो हमें टैक्सी से ही जाना पड़ेगा।
भाई इसमें हर्जी क्या है, पूरी जिंदगी हम लोगों के ड्राइवर रहे, अब एक मर्तबा तुम भी अगर लोगों की मुसाफिर बन जाओगी तो इसमें हर्जी क्या है?
इसका मतलब अब तुम टैक्सी एजेंसी नहीं जाओगे।
वल्ला अगर जनाब तशक्कुरी मुझसे राजी हों तो मुझे नहीं लगता कि एजेंसी जाना होगा। अलबत्ता अगर मान जाएं और मेरा काम पसंद आ जाए तो मैं वहाँ का गवर्नर बन जाऊंगा।
गवर्नर ज्यादा बड़ा होता है या मेयर?
इनका मतलब है ये हमारे ड्राइवर बन जाएंगे।
पापा पूरी जिंदगी आपके ड्राइवर ही तो थे अम्मी। मेरे ख्याल में पापा अंकल और दादा जान के खुदा की रहमत हो उन पर सभी औरतों के मुरीद थे और हैं।
औरतों के मुरीद से क्या मतलब है?
यानी वो सब अपनी बीवियों से डरते हैं। मेरे ख्याल में मर्द को ऐसा होना चाहिए कि बीवी उसको खातिर मिलाए।
अमीर अली बेटे, हम भी किसी जमाने में ऐसी ही बातें करते थे। अभी रुक जाओ, तुम्हारी भी बारी आएगी।
मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ पापा, वक्त आने पर देखा जाएगा।
जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो वरना मारूंगी, जो मुंह में आए बोलता रहता है।
मार लो, मुर्तजा ने तुम्हें मारा पीटा तब समझ आएगी कि मर्दों की इज्जत करनी चाहिए।
पापा के जवान बेटे, अच्छे बेटे, जाओ अपनी पढ़ाई करो, उठो चलो।
मेरी पढ़ाई हो गई पापा।
चलो बंद करो इसे, उठो यहाँ से।
हाँ ना,
खुदा का शुक्र है कि अमीर अली हमेशा अपनी स्टडी पूरी कर लेता है, अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, बस इसकी जबान बहुत लंबी है।
हातिफ साहब, आखिरकार आप मेरे साथ 2-3 घंटा शॉपिंग करने चलेंगे या मैं अकेली जाऊं?
अभी देखता हूं कि क्या होता है, अगर प्रोग्राम बन गया तो ठीक है, चलूंगा तुम्हारे साथ। अलबत्ता मुझे फोन करके वो लोग बताएंगे। तुम तो जानती हो कि अभी मेरा खुद का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है, अभी तो मैं लोगों का मजदूर हूँ।
जो भी नहीं जानता वो तो यही समझेगा कि पूरी जिंदगी हमारे ही ड्राइवर
नहीं था। क्या क्या नहीं था, बोलो क्या नहीं था?
हाँ,
कहाँ थे ये? तुम भी ऐसी बातें करती हो, हमेशा अपने पापा की तरफदारी करती हो।
ये बच्ची तो मेरा हाल बयान कर रही है ना।
अब छोड़ो भी, क्या बात करें इस बारे में।
पिज्जा पसंद नहीं आया? खा तो रहा हूं ना। दादी आपने नहीं खाया?
पेट भर गया बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लजीज था।
माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि आपको ऐसा खाना पसंद नहीं आता। इस तरह की चीजें आपके खाने का मजा नहीं दे सकती, सब जानते हैं, खासकर दिगड़ चीजें और आपका वो अचार चटनी वगैरह।
आजकल की दुनिया फास्ट फूड की है, खाना पकाना किसका हौसला है?
बदलाव के लिए बुरा नहीं है, लेकिन हमेशा खाना मुनासिब नहीं है। ये सारी बीमारियां बाहरी खानों की देन है।
क्या अफसोस नहीं है कि आपका वक्त खाना बनाने में जाया हो?
मुझे खाना बनाना पसंद है बेटे, मैं बड़े लगाव से खाना पकाती हूँ, इसलिए कि तुम लोग खाते हो, इसलिए कि तुम लोग मेरे दस्तरखान पर बैठते
दादी,
हो।
इसे छोड़ें, ये सुबह तक खाने की बात करता रहेगा। ये बताएं, मरियम को देखा, आपको इत्मीनान हो गया?
खुदा उसको सलामत रखे, मेरी बच्ची की तो उन्होंने हालत खराब कर दी। कैसे लोग हैं ये आखिर?
गुंडे लोफर लोग, पुलिस उनकी तलाश में है, पकड़े जाएंगे।
बस मरियम ठीक हो जाए, बाकी लोग जहन्नम में जाएं, पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं।
उनके तो टुकड़े कर देने चाहिए। चलो मैं चाय लेकर आऊं।
चाय मुझ पर छोड़ दें, आप खराब वाला समावर लेकर आए ताकि मुर्तजा ठीक कर दे।
हाँ, मेरा समावर।
अजीज दादी, कल आपके समावर के लिए बेहतरीन एलिमेंट तो खरीद कर लाऊंगा।
बहुत शुक्रगुजार होंगी बेटा।
मुर्तजा ये चाय लो।
ठीक है।
यहां बैठो, तुमसे काम है।
तुम लोगों ने भी अपनी इस खुशबू से मुझे उलझा कर रख दिया है। मरियम के बारे में इस कानाफूसी ने मेरी तवज्जो भटका दी है, ये समावर भी जल गया।
कोई बात नहीं अजीज दादी, ये मुर्तजा के लिए लाया हूं।
तुम्हारा शुक्रिया। ये है क्या?
खोल कर देखो क्या है।
किस मुनासिबत से?
मेरे बेटे को इतना मत सताओ।
आपने इसे बिगाड़ कर रख दिया है अजीज दादी। लैपटॉप है, तकलीफ क्यों उठाई? मेरे पास है तो सही।
तुम्हारे लैपटॉप से कहीं ज्यादा नया मॉडल है, समझो कि ये तुम्हारी शादी का तोहफा है।
एक, ये तोहफा रहने दो, अभी हम सफर से जाकर वापस आ जाएं। दो, इसे अपनी बहन को दो, मुझे नहीं। तीन, इतनी फजूल खर्ची ना करो, दिवालिया हो जाओगे।
एक दो तीन मत करो, तुम्हें मुबारक हो। देखो ये समावर भी किसी पहचान वाले को देना, इससे और ज्यादा खराब ना कर दे वो।
दादी एलिमेंट है, कोई नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है।
ये मेरे लिए मेरा नैनो है, मेरे लिए बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिकल है, एटमी रिएक्टर है।
ये कहे ना दादी कि ये समावर कुरे जमीन का मरकज है।
कुरे जमीन का मरकज मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग यहीं पर सो जाओ।
ठीक है।
सुनो, कल पहले मुझे अपनी अम्मी के घर पहुँचा दो, फिर अपने काम पर जाना।
ठीक है।
शब्बा खैर।
शब्बा खैर।
शब्बा खैर दादी। कल तुम भी मेरे घर चलोगे?
क्या ना चलूं?
सचमुच आना चाहते हो या मरियम को देखना है, या ये भी कोई नया खेल है?
खेल?
अपने अतराफियों के लिए भी थोड़ा हक देने के कायल हो।
मरियम ने तुमसे कुछ कहा क्या?
वो शेर दिल लड़की है, अपना वादा नहीं तोड़ा करती।
एक बात पूछूं?
पूछो।
तुम सच में मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो?
अगर ये इज्जत मुझे दो तो जरूर।
कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ब्लड ग्रुप थोड़ा आपस में फर्क कर जाए।
मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे मौके पर पता है कि क्या करना है।
परी, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या?
हाँ पूछो।
अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने आए तो क्या तुम अपने घर लौट जाओगी?
वो नहीं आएंगे, तुम उन्हें नहीं जानती। वो लोग कभी भी ठीक होने वाले नहीं हैं।
अगर ठीक हो गए तो?
किसी को भी सरगर्दानी और बेकार जिंदगी से खुशी नहीं होती। अगर वो आ गए तो सच में मैं उनके साथ चली जाऊंगी।
अगर वो आ जाए और तुमने तमाशा करना शुरू कर दिया तो?
फिर तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ होंगी।
सच में बेवकूफ हूँ?
कुछ ज्यादा ही हूँ मैं।
देखो, मैंने किसी के साथ शर्त रखी है कि अगर तुम्हारे माँ बाप आ गए तो तुम चली जाओगी।
क्या बात है, डॉक्टर भी शर्त लगाया करते हैं
कभी कभी।
अफसोस कि वो नहीं आएंगे, वरना तुम जीत जाओगी।
तो मैं शर्मिंदगी से बच जाती?
हाँ बिल्कुल, इस तरह से दौड़ कर जाऊंगी कि तुम देखती रह जाओ।
मेरा हाथ।
मुझे माफ कर देना।
नहीं, कोई बात नहीं। परी, तुम्हारे मेहमान आए हैं।
मेरे लिए? कभी नहीं। माँ, मेरी माँ,
मेरी बच्ची परी, तुम ठीक तो हो ना बच्ची?
मेरी बच्ची,
ये क्या हो गया तुम्हें मेरी बच्ची?
आप इधर आए मेरे पास।
मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें इस हालत में देखा नहीं जाता।
अरे थोड़ा हमारे लिए भी रहने दे।
सलाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ। तुमने नहीं, बहुत नहीं। कर्म किया मुझ पर।
शुक्रिये की कोई बात नहीं।
तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ।
तो ये तुम्हारा कारनामा था?
तुम्हारी वजह से हुआ। तुम चाहती थी ना कि मैं शर्त जीत जाऊँ।
حس میکنه نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.